आप सब लोग जानते हैं कि कोई पात्रता नहीं है, लेकिन जब गुरु महाराज की आज्ञा होती है तो आज्ञा के साथ साथ जो इम्पावरमेंट आती है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा उसका चर्चा करने के लिए। तो एक महाराज यहाँ तो अयोध्या, वृंदावन, गौरलीला सब कुछ इतना सुंदर महाराज ने वर्णन किया है, तो मुझे एक जस्ट एक राधा मन इजोलनेस गौर गोविंद महाराज का जो किताब से एक जस्ट वर्णन याद आया कि एक बार जब किस तरह से भगवान की लीला है होती है, और भगवान के लीलाओं में श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट होते हैं, तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग, उसमें वर्णन आता है कि भगवान श्री नरसिंह देव जब प्रकट होते अपने भक्त के लिए, तो भगवान नरसिंह देव मतलब हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो जाता है कि कहते प्रह्लाद, मैं इतनी आपको तकलीफ देता हूँ, इतना कोशिश करता हूँ आपको मारने के लिए, लेकिन आप हमेशा विष्णु 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 कहते हैं, ये कहाँ है आपके विष्णु? तो प्रह्लाद कहते कि सर्वगत सब जगह मेरे भगवान स्थित है, तो क्या एक खंभे में है? तो बोलते कि जब सब जगह है तो इस खंभे में भी है। तो नरसिंह हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो जाता है और वो तलवार से इतना जोर से खंभे के ऊपर मारता है कि खंभा टूट जाता है, और वहां से कौन प्रकट हो जाते हैं? भगवान नरसिंह देव की, नरसिंह देव भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं और सारे जो योद्धा है, सैनिक है, सबको मार देते हैं, हिरण्यकश्यप को भी वध करते हैं, और प्रह्लाद को अपने गोदी में रखकर जब वो प्रेम से वहां उनका हाथ फेराते हैं, तो देखकर प्रह्लाद को बड़ा आनंद होता है। इसको प्रह्लाद को बड़ा आनंद होता है कि मेरे परम पिता है नरसिंह देव का हाथ मेरे पीठ से घूम रहा है, और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो देखकर प्रह्लाद को आनंद हो रहा है, लेकिन नरसिंह देव मन में सोच रहे कि जितना प्रह्लाद को आनंद हो रहा है मुझे नहीं हो रहा है, तो शायद क्यों आनंद नहीं हो रहा है मुझे? क्योंकि मैं पत्थर से आया हूँ, इसलिए मुझे इतना आनंद नहीं हो रहा है। तो अगली बार जब आऊंगा तो मैं पत्थर से नहीं आऊंगा, क्योंकि नरसिंह कैसे पत्थर से आए थे, खंभे से प्रकट हुए थे, तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो पत्थर से नहीं आऊंगा, माता पिता से आऊंगा। तो मतलब भगवान की जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई थी। क्या मुझे प्रह्लाद को परम पिता का हाथ मेरे सर से घूम रहा है, वो आनंद हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा क्योंकि मैं पत्थर से आया हूँ, अगली बार जब आऊंगा तो माता पिता से आऊंगा। और तभी त्रेतायुग में जब भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होते हैं, तो कहाँ को किससे प्रकट होते हैं? वो माता पिता से, दशरथ महाराज और माता कौशल्या से प्रकट होते हैं, और वहाँ इतना वात्सल्य प्रेम का आनंद उसका अनुभव करते हैं दशरथ महाराज, माता कौशल्या, और इतना सारा समाज है, प्रजा इतना प्रेम करते हैं। हम देखते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास के लिए निकले, तो 3 दिन में दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ दिया, इतना जो वात्सल्य प्रेम था दशरथ महाराज का, इतना उसका वो अनुभव कर रहे थे। फिर लक्ष्मण है, भरत है, भरत इतना कहके नहीं, इतना सारा सब कुछ उनके लिए बना बनाया और राज देने लगे, लेकिन भरत कहते कि नहीं, ये मेरे श्री राम मेरे बड़े बड़े भाई है, उनका स्थान या उनका राज्य कभी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये सब कुछ न्योछावर करने के लिए सबका इतना प्रेम, फिर बंधु प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, मित्र प्रेम है, सर्वोच्च जो स्थान है सबका वो अनुभव कर रहे थे। लेकिन जैसे हनुमान जी का भी देखते हैं, हनुमान जी को जब उन्होंने बख्शिश रूप में जब वो माला दी, तो कोई कहता कि हनुमान जी वो हर एक जो मणि था उसको तोड़ रहे थे, तो कोई कहता क्या हनुमान जी, क्या आपको अच्छी नहीं लगी भेंट? बोले कि भेंट तो अच्छी है, लेकिन उसमें राम ढूंढ रहा हूँ, मेरे सिया राम उसमें है क्या ढूंढ रहा हूँ? तो कहते कि मणि में आप श्री राम को ढूंढ रहे हो, क्या आपके शरीर में भी श्री राम है? बोले क्यों नहीं, तो छाती को खोल देते हैं और उसमें सिया राम का सब लोग दर्शन करते हैं। तो इतना जो भक्त का प्रेम, बंधु का प्रेम, जो वात्सल्य प्रेम, सबका अनुभव करते हैं भगवान श्री रामचंद्र। लेकिन अंततः भगवान श्री रामचंद्र के मन में भी एक इच्छा रह जाती है। क्या इच्छा रहती है कि ये सारा जो प्रेम मुझे करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा घनिष्ठ प्रेम चाहिए। ये जो अभी सबको पता है कि श्री राम भगवान है, तो इसमें थोड़ा ऐश्वर्य है, तो मुझे ऐश्वर्य ने मुझे पूरा ऐसा घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए, इसमें कोई ऐश्वर्य का तीज ना हो। तो उसके बाद जब द्वापर युग आता है, तो कौन प्रकट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं, तो पूरा ऐश्वर्य जो है उसको साइड कर देते हैं। और उसमें भगवान श्री कृष्ण इतना जो घनिष्ठ प्रेम है, फिर गोपियों का प्रेम है, नंद महाराज है, माता यशोदा है, इतना घनिष्ठ प्रेम का वो अनुभव करते हैं। एक दिन वहाँ सारे, क्योंकि भगवान कृष्ण छोटे बालक हैं, इतनी बाल लीला जो इतनी मधुर है कि स्वयं शिव जी कैलाश से आ जाते हैं। माता पार्वती से कहते कि जो यहाँ वृंदावन में जो बाल लीला होने वाली है, वो गोलोक वृंदावन में भी नहीं हो, तो वहाँ किशोर लीला है। तो बाल लीला खाली जब भूम वृंदावन में जब कृष्ण आते हैं, तभी वो बाल लीला का लीलाओं का दर्शन होता है। तो दर्शन देखने के लिए, वो लीलाओं का दर्शन करने के लिए स्वयं शिव जी कैलाश से नीचे उतरते हैं। इस प्रकार से बाल लीला जब होती है, तो एक दिन कृष्ण का जो नटखटपना है वो देखकर माता यशोदा उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। तो बांधने के बाद बलराम जी, सारे बाल गोपाल आते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। तो बलराम जी जाकर कृष्ण से कहते हैं कि अरे कृष्ण, कहा ना तुमको किसने बांधा है? तो कृष्ण कहते हैं कि और कौन बांधेगा, यशोदा ने बांधा है। क्या यशोदा को पता नहीं? उनका तो, क्योंकि बड़े भाई है, तो थोड़ा वात्सल्य बाहर आ गया। कहते कि क्या माता को पता नहीं कि आप कौन हैं? बोलते कि कौन समझाएगा उनको, कौन? कृष्ण बलराम जी से कहते हैं तो आप ही जाकर समझाओ। तो बलराम जी बड़े जोर से बात बोलते बोलते अंदर जाते हैं। तो कहते कि पता नहीं कहना कौन है, पता नहीं कृष्ण कौन है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो माता यशोदा कुछ कार्य कर रही है, बोलते क्या क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बोलते कि पता नहीं कृष्ण को अपने बांधा है, पता नहीं कृष्ण कौन है। तो बोले कौन है? बोले कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बोले आप कौन है? बोलते कि मैं सारे अवतारों का स्रोत हूँ। तो बोले कि सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या? भाग यहाँ से, और बलराम को भगा देती है और कृष्ण को। तो वहाँ बलराम जी जाकर कृष्ण से कहते कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। और फिर इस तरह से वहाँ पर जो ऐश्वर्य भाव पूरी तरह से शून्य है, घनिष्ठ प्रेम का आनंद लेते हैं। माता यशोदा है, नंद महाराज है, गोप है, गोपी है, गोपिया जो है कृष्ण से कहते कृष्ण नाच के दिखाओ, आपको संदेश खिलाएंगे। तो कृष्ण नाच के दिखाते, इतना घनिष्ठ प्रेम का वहाँ आदान प्रदान होता है। और ये सब होने के बाद भी भगवान कृष्ण जब निकलने का समय आता है, तो भगवान श्री कृष्ण के मन में भी एक इच्छा अधूरी रह जाती है। वो क्या कहते हैं कि ये जो भक्त है, मेरे जो भक्त है, मुझसे ज़्यादा आनंदी है, ज़्यादा जो आनंद का आनंद को प्राप्त करते हैं, ये कैसे हो सकता है? मतलब देखो, नरसिंह लीला में वो चाहते थे कि वात्सल्य प्रेम का मुझे आनंद लेना है, जैसे प्रहलाद को मिल रहा है। इसलिए माता पिता से दशरथ महाराज कौशल्य से आए थे। तो वहाँ आने के बाद भी उन्होंने देखा कि थोड़ा ऐश्वर्य है इसमें, तो मुझे थोड़ा और उसका घनिष्ठ प्रेम जो है उसको चेकना है। तो कृष्ण लीला में पूरा घनिष्ठ प्रेम का आनंद ले रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी जब उन्होंने देखा कि जब इतना आदान प्रदान होता है, इतना घनिष्ठ प्रेम का आदान प्रदान होता है, लेकिन उसमें भी मुझसे ज़्यादा मेरे भक्त ज़्यादा खुश है, ज़्यादा आनंद का आनंद लेते हैं। जैसे कोई फूल होता है, तो फूल में मध होता है, लेकिन फूल को उसका स्वाद नहीं मिलता। जो फूल में शहद होता है, उसका स्वाद कौन लेता है? जो भ्रमर होता है, जो मधुमक्खी होता है, वो उसका स्वाद लेता है। वैसे भगवान के चरणों में भक्ति का सागर है, लेकिन भक्ति का स्वाद जो है भगवान ने चख पाते, वो कौन चखता है? जो उनके भक्त है, वो भक्ति का आनंद उसका उसको चखते हैं। स्वाद को चखते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि मुझे अगली बार जब आना है तो मेरे भक्त के रूप में आऊंगा, तभी क्योंकि मुझे देखकर श्रीमती राधा रानी इतने खुश कैसे रहते हैं, मुझे देखकर राधा रानी का ऐसा क्या आनंद होता है, गोपियों को क्या आनंद होता है, मुझे देखकर मेरी भक्ति को प्राप्त कर मेरे जो भक्त होते सारे संसार के सुखों को कैसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा क्या भक्ति का आनंद है, वो मुझे चखना है। और वो चखने के लिए जब कलयुग में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगा सर्पाषदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति सुमेधसः, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, वैसे सांवले कृष्ण जो गोरा रंग धारण करके आते हैं और बाकी अवतारों में जो है अलग अलग शस्त्रास्त्र लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भगवान आते हैं तो उनके शस्त्र क्या होते हैं, सांगो पांगा, जो उनके पार्षद है वही उनके शस्त्र होते हैं, और वो लेकर कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और वहाँ जैसे परम पूज्य राधारमण स्वामी ने कहा कि कैसे पंच तत्व आकर उन्होंने जो भक्ति का जो रत्न था, इस संसार में सारे अलग अलग रत्न हैं, अलग अलग गहनों में अलग हार में डालते हैं, मुकुट में डालते हैं, जो रत्न है अलग अलग भौतिक संसार के, इसकी बहुत सारी कीमत हो सकती है, लेकिन जो सबसे अमूल्य ऐसा रत्न है वो भक्ति का रत्न है, शुद्ध भक्ति का रत्न है। और वो रत्न जो है जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रेम क्या है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ, और भक्ति करने वाले सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है। तो बताया कि सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम रोज अहम ताम सर्व पापे मोक्षेषा मासुच, उन्हें बताया कि सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करो, मुझे शरण में आ जाओ, भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन कैसे करना है। ओ श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के साथ जब आते हैं, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के रूप में आते हैं, और तभी अपने जो अनेक उनके जो पार्षद हैं उनके द्वारा सारे संसार को बता देते हैं। और जो संदूक है भक्ति प्रेम का, संदूक में भक्ति प्रेम है, उस ताले को तोड़ देते हैं, कौन, पंच तत्व। और नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरुत्विषे नमः, इस तरह से जो भक्ति का रस है, महाउदार व्यक्ति के रूप में चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति रस है उसका वितरण करते हैं। तो यहाँ स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर यहाँ भक्ति का जो रस है स्वयं चखते हैं और सारे संसार को भी उसका वितरण करते हैं। वही भगवान नरसिंहदेव का प्रह्लाद के प्रति जो प्रेम है, वही भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में दशरथ महाराज, माता कौशल्या, लक्ष्मण, भरत, सारे जो उनके जो पार्षद है, जो भक्ति का जो रस है उसको स्वाद लेते हैं, वही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में है, द्वारका में जो भक्ति का रस सारे अपने प्रियजनों को बांटते हैं, वही भक्ति रस, जो रास का जो आनंद है, वही आनंद यहाँ कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर हरिनाम के रूप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरिनाम के रूप में सारे संसार को बांटने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और वही अनमोल रत्न है, हमें श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर स्वान के रूप में, भक्तों के रूप में, और आज यहाँ पर गोवर्धन कॉलेज के रूप में हमें दिया है। और वही संदेश जो है परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज अभी हमें देकर गए कि किस तरह से ये जो गोवर्धन कॉलेज है आप सबके लिए, हम सबके लिए आध्यात्मिक, जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद इतना बड़ा घर बांधा है कि सारा संसार उसमें रह सकता है। तो जो कांग्रेगेशन इसके लिए जो यहाँ पर हमें आध्यात्मिक घर दिया है, जो यहाँ आकर हम अपने भक्ति का जो आनंद है यहाँ पर लूट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। क्षमा करना, आपको रसगुल्ला खाने के बाद थोड़ा करेला भी खाना पड़ा, तो वापस रसगुल्ला खाने के लिए आप राह देखते रहे फिर कभी महाराज जी मिलेंगे और आपको वापस उसका स्वाद मिलेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। हम लोग रूप रघुनाथ प्रभु का 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।